नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। चक्रवात रेमल के कारण असम और मिजोरम में तेज बारिश, आइजोल के पास भूस्खलन से कम 12 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने संगठित मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और पेरिस में आज फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष युगल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना और यूकी भांभरी अपना अभियान शुरू करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज होगी। झारखंड के दुमका एयरपोर्ट ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने शासन में झारखंड को लूटा और धन संग्रह किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में विशाल मात्रा में नकदी बरामद हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और आईएनडीआई गठबंधन भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म अभिनेता तथा गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन के लिए प्रचार किया। श्री योगी ने कैम्पियरगंज क्षेत्र में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अलग से आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रूपये का कैशलेस स्वास्थ्य इलाज मुफ्त मिलेगा। वे आज मिर्जापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी गोरखपुर जिले के बासगांव क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कुशीनगर जिले में एक रैली में भाजपा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। श्री यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ वाराणसी के मोहनसराय इलाके में संयुक्त रूप से एक राजनीतिक रैली को संबोधित किया। वे बासगांव लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प सभा को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम बिहार और उड़ीसा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र के विषय के बारे में।
बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफी रोचक है। भाजपा से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी गायक पवन सिंह ने यहां से राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। इससे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह के लिए चुनावी लड़ाई काफी कठिन हो गई है। हाल ही में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने यह सीट एनडीए गठबंधन में हुए समझौते में जदयू से प्राप्त की थी। क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले का कब्जा है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को अपनी लोकप्रियता के जरिए जीत का भरोसा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें काफी चुनावी फायदा मिलने जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
और अब आइए जानते हैं उड़ीसा की केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बारे में।
केंद्रपाड़ा उड़ीसा का एक हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने जननायक बीजू पटनायक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय जैसे कई दिवंगत राजनीतिक दिग्गजों को लोकसभा को भेजा है। आड़ी, महाकालपाड़ा, राजनगर, केंद्रपाड़ा, पाटकुरा, किशननगर और महांगा विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र के अधीन आते हैं। 2024 के चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र में 17,91,112 मतदाता है, जिनमें 42,181 पहली बार के मतदाता शामिल है। उद्योगों की कमी, बेरोजगारी और कुशल कारीगरों का पलायन केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र में हमेशा से प्रमुख मुद्दे रहे हैं। इस बार चुनाव में लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा और बीजेडी के युवा चेहरा अंशुमान महंती के बीच है। कांग्रेस ने सिद्धार्थ स्वरूप दास को मैदान में उतारा है। केंद्रपाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
लोक निर्णय 2024,
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम।
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष उन्हें धोखा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे इस समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे।
देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, कौन ब्रिज बनाएगा, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं?
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चक्रवाती तूफान रेमाल के कारण असम में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। चिरांग, ग्वालपाड़ा, बक्सा, दिमा हसाओ, कछार, हैलाकंडी और करीमगंज जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। धुबरी, दक्षिण सालमारा, बोंगाईगांव, बजाली, तोमलपुर, बारपेटा, नलबाड़ी, मोरीगांव, नौगांव, होजाई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान से मिजोरम में आज सुबह आइजोल से करीब 4 किलोमीटर दूर हिमन में भूस्खलन के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात रेमल के कारण कल रात से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव कार्य जोरों पर है।
मिजोरम में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन और पेड़ों के गिरने से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। राजधानी आइजोल शहर में दुकानें बंद हैं और सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री लालडोहामा ने आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रूपये की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। आइजोल से गिनगैंटिक रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
वहीं पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल से संबंधित घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच 24 परगना, कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश तथा तेज हवाएं रुक गई हैं। तूफान के प्रभाव से दक्षिण उत्तर 24 परगना जिलों के तटीय इलाकों में एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने गंभीर चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ बेहतरीन तालमेल किया है। ये चक्रवाती तूफान 22 मई को कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के तटों पर पहुंचने से पहले गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया था। विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर भारत ने पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में इस महीने की 24 तारीख को एक विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में सैकड़ों लोग दब गए और जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य में बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण हुई तबाही और कठिन घड़ी में भारत पापुआ न्यू गिनी के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े गिरोह के खिलाफ एक बड़े अभियान में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस बलों की संयुक्त कार्रवाई के तहत 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 15 स्थानों पर तलाशी ली गई। इन आरोपियों को वडोदरा, गोपालगंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, गुरूग्राम और चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी उस नेटवर्क के लिए काम करते थे जो भारतीय युवाओं को नौकरी के झूठे आश्वासन देकर विदेश ले जाते थे। विदेश पहुंचने के बाद इन युवाओं को लाओस और कंबोडिया जैसे स्थानों पर फर्जी कॉल सेंटरों में अवैध गतिविधियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि निवर्तमान 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक, 3 तलाक उन्मूलन और भारतीय न्याय संहिता जैसे विधेयकों को पारित करने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। नई दिल्ली में आज आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिरला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान हुई चर्चा और बहस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगी।
5 साल का कार्यकाल मेरे लिए अस्मरणीय है क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत और महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ, कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ चर्चा करने के साथ सरकार की नीतियों को, सरकार को मार्गदर्शन करने का काम ये लोकतंत्र के मंदिर करते हैं। इसलिए संसद भवन के माध्यम से, चाहे संविधान पुराना संसद भवन जो हमारा संविधान सदन है, नया संसद भवन, उसमें जितने भी विधेयक पारित हुए अपने आप में ऐतिहासिक है और देश को आगे बढ़ाने वाले विधेयक हैं, देश में नए परिवर्तन को करने वाले विधेयक हैं और 2047 में भारत कैसा बनेगा उसके लिए ये चर्चा डिबेट जो हुई है आने वाले समय में भारत के लिए रोड मैप होगी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और यूके भांबरी पेरिस में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन की जोड़ी का मुकाबला फिनलैंड के एमिल रुसुवोरी और हंगरी के मार्टिन फुस्कोविस की जोड़ी से होगा, जबकि भांबरी और फ्रांस के अल्बानो एलिवेटी का मुकाबला आज रूस के रोमन सफियोलिन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स के साथ होगा। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कटोचा ने आयुष क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में कई शोध आधारित कार्य किए हैं। श्री कटोचा आज नई दिल्ली में फार्मा रिसर्च एंड आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया था जो आयुष मंत्रालय का एक अनुसंधान निकाय है। श्री ने कहा है कि इस क्षेत्र में वैश्विक मानक पर खरा उतरने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ किरण बेदी ने आज हितधारकों से मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक शोध करने का आह्वान किया। डॉ बेदी ने एसोचैम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नीतिगत हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पानी और गैस की तरह सैनिटरी पैड भी महिलाओं के लिए आवश्यक है। डॉ बेदी ने जेलों में मासिक धर्म संबंधी उत्पादों की पहुंच के बारे में चिंता व्यक्त की और तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरण के कारण अतिरिक्त राजकोषीय बढ़त के साथ भारत में निरंतर विकास गति की उम्मीद है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में विकास की दर सशक्त बनी हुई है और मुख्य मुद्रास्फीति के अप्रैल जून की समय अवधि में निचले स्तर पर आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। चक्रवात रेमल के कारण असम और मिजोरम में तेज बारिश। आइजोल के पास भूस्खलन से कम 12 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने संगठित मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टेनिस में पेरिस में आज फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी अपना अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।